यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरवन चारी जमुना तीरवन जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
सारे चला दो सारे चला
हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्ण कृष्णा हरे हरे
करताल ठीक से बजाइए ना करताल ले लीजिए
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे
थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ थोड़ा आगे ना हरे हरे कृष्णा आगे आ जाओ
राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 राम हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम राम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भव तुमे जगन्नाथ स्वामी नयन पथ आमी नयन पथगामी भव तुमें जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज काचार्य अष्टोत्तर सत हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज काचार्य अष्टोत्तर सत हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की गुरु परम्परा की रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ सठ गोस्वामी प्रभु की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की वृंदावन मथुरा धाम की नवदीप मायापुर धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की गंगा माई की जमुना माई की जय भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय संवेद भक्त वृंद की जय युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की श्री श्री राधा श्याम सुंदर गौर नेता श्री श्री कृष्ण बलराम श्रीमद भागवत महापुराण की जय निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटी हरे कृष्ण ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज गुरु एन गौरंगा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 अध्याय 14 अध्याय का शीर्षक है आदर्श पारिवारिक जीवन और आज का श्लोक क्रमांक है 5
यावत् अर्थम उपासिनो देह गेह च पंडित विरक्तो रक्तवत् तत्र नृलोके नर्तम्यसे यावत् अर्थम् उपासिनो देहे गेहे च पंडित विरक्तो
रक्तवत् तत्र नृलोके नरताम्यसे यावत् अर्थम् उपाशिनो देहे गेहे च पंडिता विरक्तो रक्तवत् तत्र नृलोके नरताम्यसेत् वैष्णवी वैष्णवी जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य यावत अर्थम जीव का हेतु जितने प्रयास की आप लोग पीछे से दोहराइए जीव का हेतु जितने प्रयास की आवश्यकता हो उतना ही उपासना कमाते हुए देहे शरीर में गेहे घरेलू विषयों में च भी पंडित विद्वान विरक्त जरा भी आसक्त नहीं रक्तवत् अत्यधिक आसक्त की भांति तत्र उसमें नृलोके मानव समाज में नरताम मानव जीवन में न्यसित विचित्र करें चित्रित करें। वास्तविक विद्वान को चाहिए कि वह शरीर पालन के हेतु जितना आवश्यक हो उतना ही अर्जित करने हेतु कार्य करें और पारिवारिक विषयों से अनाशक्त होकर मानव समाज में रहें। यद्यपि बाहर से भले ही वह उसमें अत्यधिक आसक्त प्रतीत होता हो। तात्पर्य ध्यान से सुनिए, आप लोग थोड़ा आगे आ जाइए, पीछे वाले आराम से बैठ जाएं। यह आदर्श पारिवारिक जीवन का चित्र है जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से जीवन के लक्ष्य के विषय में पूछा तो उन्होंने शास्त्रों की संस्तुति के अनुसार उसका विभिन्न विधियों से वर्णन किया और अंत में बताया कि मनुष्य अपने पद पर बना रहकर चाहे वह ब्राह्मण हो या शूद्र या सन्यासी इत्यादि हो जीवन के उद्देश्य के विषय में जिज्ञासा करे अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य जीवन का यही वास्तविक उपयोग है। जब अनावश्यक ही मनुष्य इस मानव स्वरूप का दुरुपयोग पशुओं जैसी वृत्तियों में भोजन ग्रहण करने सोने मैथुन करने तथा रक्षा करने में करता है और उस माया के चंगुल से छूटने का प्रयत्न नहीं करता तो प्रयत्न करता जो जन्म मरण जरा तथा व्याधि के चक्कर में डालती रहती है तो उसे निम्न योनियों में धकेल कर दंड दिया जाता है, जहां से भौतिक प्रकृति के नियमों के अनुसार उसे विकास करना पड़ता है। प्रकृति क्रियमानानि गुणे कर्माणि सर्वशः, भौतिक प्रकृति की पकड़ में निबद्ध रहकर जीव को पुनः निम्न योनि से उच्चतर योनियों में जब तक तब तक विकास करना होता है जब तक वह मनुष्य जीवन में लौट नहीं आता और भौतिक चंगुल से छूटने का अवसर प्राप्त नहीं करता। किंतु बुद्धिमान मनुष्य शास्त्रों से तथा गुरु से सीखता है कि हम सभी जीव शाश्वत हैं, किंतु भौतिक प्रकृति के नियमों के अधीन विभिन्न गुणों की संगति करने के कारण कष्टप्रद स्थिति को प्राप्त होते रहते हैं। अतएव वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उसे मनुष्य जीवन में व्यर्थ की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रयास नहीं करना चाहिए, अपितु उसे अत्यंत सादा जीवन बिताना चाहिए जिससे शरीर का पालन हो सके। मनुष्य को निश्चय ही जीविका का कोई साधन चाहिए और उसके वर्ण तथा आश्रम के अनुसार शास्त्रों में जीविका के साधनों की संस्तुति की हुई है। अतएव श्री भगवान का निष्ठावान भक्त अधिक धन की लालसा न करके अपनी जीविका चलाने हेतु कोई न कोई साधन ढूंढ लेता है, और जब वह ऐसा करता है तो भगवान श्री कृष्ण उसकी सहायता करते हैं। अतएव उसके लिए जीविकोपार्जन कोई समस्या नहीं बनती। वास्तविक समस्या तो जन्म मृत्यु तथा जरा के बंधन से मुक्त होने की है। इस स्वतंत्रता को प्राप्त करना तथा व्यर्थ की आवश्यकताओं का अनुसंधान न करना ही वैदिक सभ्यता का मूल सिद्धांत है। मनुष्य को अपने आप जो भी जीविका के साधन प्राप्त हो जाएं, उनसे संतुष्ट रहना चाहिए। आधुनिक भौतिकतावादी सभ्यता आदर्श सभ्यता से सर्वथा विपरीत है। मानव समाज के तथाकथित नायक प्रतिदिन किसी न किसी ऐसी वस्तु का आविष्कार करते रहते हैं जिससे जीवन शैली जटिल बनती जाती है और मनुष्य जन्म मृत्यु जरा और रोग के चक्कर में अधिकाधिक उलझते जाते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु व्ययेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अजानुलम्बितभुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वंभरो द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे जगत प्रियकरो करुणावतारो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादे कृष्ण हरे कृष्णा। सर्वप्रथम श्री श्री राधा श्याम सुंदर गौर नित्य श्री श्री कृष्ण बलराम और यहाँ पे उपस्थित जितने भी वैष्णव और वैष्णवी गण हैं, अदृश्य रूप से उपस्थित सभी देवी देवताओं के श्री चरणारविंद में मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ और कृपा की याचना करता हूँ। जो श्रीमद्भागवतम जो मुक्त जीवात्माओं की वार्ता है उसको मैं दोहरा सकूँ, आचार्यों को वाणी को एज इट इज आप सब भक्तों के समक्ष प्रस्तुत कर सकूँ, तो मेरे मुख से उसी वाणी का प्रयोग हो जो साधु गुरु शास्त्र के द्वारा सम्मत हो। हरे कृष्णा। आप सब सभी भक्तों का यहाँ पे इस भागवतम की सुबह की कक्षा में स्वागत है। तो बहुत ही सुंदर अभी जो सब्जेक्ट मैटर है ना, ये पूरा का पूरा एक गृहस्थ परिवार, एक अभी के समाज के लिए ही है। श्रील प्रभुपाद जी इसमें इतना सुंदर परपट दिए हैं जो परपट ही अपने आप में सफिशियंट है। श्रील प्रभुपाद जी का परपट ऐसा होता है ना, एक लेक्चर पूरा का पूरा है लेक्चर, हो कई लेक्चर्स उस परपट से तैयार हो सकते हैं। करे यावत अर्थम उपासीनो देहि गेहि च पंडित विरक्तो रक्त वक्त तत्र निर्लोके नरताम न्यसित। वास्तविक विद्वान को चाहिए कि वह जीवन शरीर पालन हेतु जितना आवश्यक हो उतना ही अर्जन करने हेतु कार्य करे। देखिए मनुष्य का स्वभाव है ज्यादा से ज्यादा अर्जन करना। देख रहे अभी का मानव समाज इस परपट के अंदर में सबसे लास्ट पैराग्राफ में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं जो अभी का जो मानव समाज है और श्रील प्रभुपाद जी का जो सिद्धांत है सादा जीवन उच्च विचार, उसके एकदम विपरीत दिशा में है। मनुष्य वो सब काम करता है इस जगत में, सारा काम देखिए 99% व्यक्ति जो भागवतम के जो चार नियम विधि और निषेध जो दिए हुए हैं उसके विपरीत में काम करता है। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं ये जो हमारे चार नियम हैं क्या है, मांसाहार नहीं करना, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, अवैध स्त्री पुरुष संबंध नहीं करना, इसी चार नियम में पूरा का पूरा जगत लगा हुआ है। देख लीजिए इस चार हेड के अंदर में सभी लोग लगे हुए हैं। लेकिन प्रभुपाद की क्या योजना है, प्रभुपाद की योजना है श्रील प्रभुपाद जी इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, इस्कॉन की स्थापना किए, इस्कॉन की स्थापना श्रील प्रभुपाद जी गेहे गेहे जने जने। हम सब किस परंपरा में है, नारद जी के परंपरा में है। और नारद जी और भक्ति देवी जो आप भागवतम की महात्म्य में श्रवण करते हो तो भक्ति देवी को नारद जी क्या बोलते हैं, यही पापरी चौराहा पे, यहीं पे जो घटना है जब भक्ति देवी यहाँ पर मैं आई थी तो यही ये पापरी चौराहा है जहाँ पर मैं प्रथम बार नारद जी को मुलाकात हुआ था, भागवतम के महात्म जो है। तो वहां पर मैं पूछते भक्ति देवी को बोलते हैं जो मैं, हे भक्ति देवी मैं आपका प्रचार देहे गेहे जने जने करूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है आपसे। तो हम लोग श्रील प्रभुपाद के अनुयायी हैं, फॉलोअर हैं, तो श्रील प्रभुपाद किसके अनुयायी हैं, नारद जी के। तो इसलिए गेहे गे, तो श्रील प्रभुपाद की योजना है हर घर में एक इस्कॉन हो, ये नहीं कि इस्कॉन वृंदावन में हो और इधर उधर हो। आज इस्कॉन की 800 मंदिर है, श्रील प्रभुपाद की योजना नहीं है। श्रील प्रभुपाद की योजना है मनुष्य जितने घर बनाकर रखा उस घर में मंदिर हो, इस्कॉन सेंटर हो, तभी तो एक गृहस्थ का धर्म होगा। एक गृहस्थ का धर्म वो नहीं होता जो वो घर में अपने पत्नी के साथ रहता है। देखिए गृहस्थ का क्या मतलब है, एक सन्यासी भी घर घर में रहता है, हम सब सन्यासी हैं ना, पहले भी शायद बताया था आप लोगों को, एक सन्यासी वानप्रस्थ और ब्रह्मचारी ये भी एक घर में रहता है और एक गृहस्थ व्यक्ति जो शादीशुदा व्यक्ति वो भी एक घर में रहता है। तो गृहस्थ का मतलब है जो घर में रहता है, तो क्या एक सन्यासी घर में नहीं रहते, सन्यासी भी घर में रहते। तो गृहस्थ का एक्चुअल डिफिनेशन वो होता है जो हमारे गुरुदेव हिज होलीनेस राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज बताते हैं, जो गृहस्थ का मतलब होता है पत्नी के साथ रहना, बच्चों के साथ रहना। लेकिन एक सन्यासी वानप्रस्थ और
ब्रह्मचारी तो पत्नी के साथ नहीं रहते हैं, इसलिए वो उनका घर गृहस्थ नहीं कहलाता, वो घर में कहलाते गृहस्थ है। और गृहस्थ का मेन धर्म होता है भगवान के अर्चा विग्रह की उपासना करना। अर्चा विग्रह की उपासना करना, जो भी आपको खाने की इच्छा है, लहसुन प्याज को छोड़ करके, चाय कॉफी को छोड़ करके, भगवान ने बोला है मुझे क्या खाना है, और उसको सबसे पहले भगवान को अर्पण करके और उनको ग्रहण करना है और मॉर्निंग प्रोग्राम करना है जो श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा दिया गया है। और वो चीज अगर घर में व्यक्ति रह करके करता है ना, तो उसको संन्यास लेने की जरूरत नहीं है। अगर मॉर्निंग प्रोग्राम करता है और अपने कर्म से आसक्त नहीं है, भागवतम सुबह में भागवतम को पढ़ता है, संकीर्तन करता है घर में, शाम को गौर आरती करता है और 16 माला का नित्य निरंतर जप करता है और कर्म के फल से आसक्त नहीं होता, ऐसे व्यक्ति को संन्यास लेने की जरूरत नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट है, करे जो जिस स्थिति में है वहीं पे रह करके व्यक्ति आराम से भजन कर सकता है, भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो देहे गेहे जने जने, इस भक्ति का जब तक प्रचार नहीं होगा तब तक जो है ना इस धरती पे सही वातावरण की उत्पत्ति नहीं होगा। देखिए इसमें कह रहे हैं यहां पर मैं श्रील प्रभुपाद जी, जो शरीर में इतनी आसक्ति रखनी चाहिए, घर परिवार में उतना ही व्यक्ति को आसक्त होना चाहिए, जो एक बार इससे निकलने का हमें मौका मिले। घर में देखिए चैतन्य महाप्रभु जो हमारे आचार्य हैं, स्वयं भगवान राधा कृष्ण के मिलित विग्रह हैं, वो हमारे मूलभूत आचार्य हैं। वो हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं, श्रील रघुनाथ गोस्वामी के माध्यम से हम सबको शिक्षा दे रहे हैं। जो एक व्यक्ति अपने घर में रहे, घर में कामकाज पूर्ण रूपेण करे, लेकिन चित्त को माइंड को कहां पे सेट करना है, भगवान के चरणारविंद में, भगवान को प्राप्त करने का उनकी पूरी की पूरी योजना रहे, रहे घर में लेकिन माइंड रहे मन में भगवान के चरणों में। तो घर में रहते हुए भी व्यक्ति भगवान के चरण में अवस्थित है, वो फुल्ली कृष्णा कॉन्शियसनेस होगा, क्योंकि नित्य निरंतर भगवान के चरणों को याद कर रहे हैं। तो कह रहे हैं घर से इतना लगाव नहीं लगाइए, हम अभी घर में हैं, गृहस्थ जिंदगी में आप सब हैं, तो घर से इतना अटैचमेंट नहीं करना है, देह से गेह से स्त्री से, स्त्री का पुरुष से, अपने बच्चों से उतनी ज्यादा अटैचमेंट नहीं करनी है जितना हमें बाद में निकलने में बड़ी दिक्कत हो जाए। जितना अटैचमेंट बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा हम फंसते जाएंगे। आप भागवतम के तृतीय स्कंद में पढ़ते हैं कर्दम मुनि जी का प्रसंग, कर्दम मुनि जी की जैसे ही स्वयंभू मुनि आए अपनी बेटी देने के लिए, जो मैं अपनी बेटी देवहूति का हाथ अपने आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूं, तो उन्होंने पहले कर लिया, जैसे ही पहला संतान होगा मैं घर छोड़ करके चला जाऊंगा। देख लीजिए पहले ही क्या होता है, साइन होता है, समझ रहे हैं। एक चोर भी चोरी करने के लिए जाता है किसी घर में ना, तो वो चोरी डायरेक्ट जाकर के चोरी नहीं करता है, वो सबसे पहले उस घर से निकलने का रास्ता ढूंढता है। अगर अकस्मात ऐसा जरूरत पड़ गया इमरजेंसी में, तो पहले भागूंगा कैसे, वो चीज का पहले जुगाड़ लगाता है, तभी जाकर के वो चोरी करना शुरू करता है। एक मकड़ी भी देखिए जाल बनाता है, उसमें रहता है, लेकिन अपने निकलने के लिए वो अपना घर बनाता है, अपना जो है ना एक होल छोड़ता है जिससे निकलने का पूरा व्यवस्था होता है। तो अगर निकलने की व्यवस्था नहीं होगी तो हम उसी तरह उसी के अंदर में फंस जाएंगे। कह रहे हैं भगवान की वस्तु, ये जो इस जगत में जितने भी आपको एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, ये किनके द्वारा दिया गया चीज है, ये सब भगवान की दिया हुआ चीज है, और भगवान के दिए हुए चीजों को उतना ही भोग करना चाहिए जितनी हमारी आवश्यकता है। इस शरीर को चलाने के लिए जितनी आवश्यकता है उतना ही लेना चाहिए, नहीं तो अपच हो जाएगा। अभी देखिए इस शरीर के अंदर में सबसे ज्यादा बीमारी किससे होती है, पेट से शुरू होती है, आपको भारतवर्ष में या कहीं भी पता चलता है किसी पेपर में न्यूज जो भूखमरी से कोई व्यक्ति मरा है? ज्यादा खाने से व्यक्ति मरा है, और ज्यादा खाने से पेट में गड़बड़ी होता है, और इस पेट से 113 बीमारियां होती है केवल और केवल ज्यादा खाने से। तो ज्यादा खाना, ये कह रहे हैं उतना ही चीजें लेनी चाहिए जितना हमें इस शरीर की आवश्यकता है। अगर शरीर की आवश्यकता से ज्यादा लेंगे ना तो फिर हमें अपच हो जाएगा, इसको पचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक जीता जागता उदाहरण आपको दे रहा हूं जो इसी मंदिर की घटना है। ये हमारे जो हेड पुजारी हैं मुकुंद दत्त प्रभु जी, उनको बहुत दिनों से इस जो काम करते हैं सेवा करते हैं मंदिर में, तो उनके मंदिर चाह रही थी जो इनकी सैलरी बढ़ाया जाए, लेकिन वो व्यक्ति क्या कर रहे हैं, मुझे सैलरी बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्यों, जितनी सैलरी हमें मंदिर दे रहे हैं सेवा का उससे हमारा घर अच्छा से चल रहा है। ये एक विरक्त महात्मा की निशानी है जो देना चाह रहे, हमें उतना ही लेना है। तेन त्यक्तेन भुंजी था मां गृध कस्य शुद्धनम्, करे मुझे उतनी ही चीजें को एडॉप्ट करना चाहिए, उतनी ही चीजें लेना चाहिए जितना से हमारा सर्वाइव हो सके, जीवन जी सके और उसको भक्ति में नियोजित कर सके अपने आप को। अगर हम ज्यादा खाएंगे तो ज्यादा सोएंगे तो भजन कब करेंगे? इसलिए अपने आप को विरक्त रखना है उन चीजों से। देखिए एक चाणक्य पंडित के बारे में एक कथा आती है, हमारे गुरुदेव बताते हैं इज होलीनेस राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज। चाणक्य पंडित जी किसके सलाहकार हैं? चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य इस जगत यहाँ पे राजा हैं जो राज्य करते थे, भाई सलाहकार उनके घर में भी रह सकते थे, उस आलिशान बंगला में रह सकते थे, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य कभी भी उनके घर में नहीं रहे, वो जंगल में अपना कुटी बना करके भगवान का भजन करते हैं। और एक बार की बात है, दृष्टांत ऐसा आता है, चंद्रगुप्त मौर्य अपने घर में बैठ करके ऑफिस का काम कर रहे थे। तो पहले के जमाने में लाइट जला करके काम होता है, ये दीप जलता है ना, दीप जिसमें जो भी तेल लगता है या जो भी है मिट्टी तेल, उससे लाइट जला करके वो काम जब कर रहे थे, उसी समय में कोई एक महान व्यक्ति उनसे मिलने के लिए आ गया। तो चाणक्य पंडित क्या करते, उस लाइट को बुझा देते हैं और बुझा करके एक अपना लाइट जो रखे हैं पर्सनल उसको जलाते हैं, और जला करके फिर बात करना शुरू करते हैं। तो जो व्यक्ति मिलने के लिए आया था वो पूछते, आप ऐसा क्यों किए, हम तो बात उस लाइट में भी कर सकते थे। लेकिन कह रहे चाणक्य पंडित जी, ये जो लाइट है ये सरकारी पैसे से चलता है, सरकारी पैसे का उपयोग उतना ही करना चाहिए जितना सरकार हमें इसके लिए तनख्वाह दे रहा है, जिसका हम जितना हम सेवा कर रहे हैं उतना सरकार हमें उसका मुआवजा दे रहा है, तनख्वाह दे रहा है। तो हम सरकार की चीजों भगवान की चीजों को हम क्यों यूज करें, जितनी जरूरत है उतना ही यूज करें। इसलिए अभी हम आपके साथ बातचीत कर रहे हैं, ये हमारा पर्सनल मैटर है, तो इतने ही चीजें का उपयोग करना चाहिए जितना हम ले सके। इसलिए व्यक्ति को ये जो चार तरह के जो आश्रम भगवान बनाए हैं, ये ब्रह्मचारी गृहस्थ ये वानप्रस्थ और सन्यासी, तो इसमें हमें गृहस्थ में इतना रचना पचना नहीं चाहिए, क्योंकि एक गृहस्थ को बोला गया है 50 वर्ष के बाद हमें वानप्रस्थ लेना है, तो 50 वर्ष के बाद वानप्रस्थ लेना है तो वो वही व्यक्ति ले सकता है जो पहले से डिटैचमेंट अपने परिवार के साथ रखेगा, समझ ले। अगर व्यक्ति अपने पत्नी, यहां पर मैं बोल रहे हैं ना, अपने पत्नी अपने बच्चे और इस घर के साथ अगर व्यक्ति आसक्त है ना ज्यादा, तो वो व्यक्ति फंस जाएगा। व्यक्ति पुराणों में कहा गया है, पुत्र मित्र कलत्रेषु सक्तासीदन्ति जन्तवा सरह पंकार्ण वै मग्न जीर्णा बन गजाइव। करे जो व्यक्ति, ये मार्कंडेय ऋषि जी बोल रहे हैं इस बात को, इस बात को बोले, जो व्यक्ति पुत्र मित्र और स्त्री में आसक्त है, अपने परिवार में आसक्त है, वो करे उस बनेला हाथी की तरह है जो एक ऐसा सरोवर है जो एकदम कीचड़ से भरा हुआ है, तो वो बनेला हाथी उस कीचड़ में जाकर के पूरी तरह से फंस गया। हाथी का शरीर भारी है और कीचड़ में जाके फंस गया तो उसमें से निकल नहीं सकता जब तक उसको कोई निकाले ना। तो जो व्यक्ति इस चीजों में आसक्त है, उनकी अटैचमेंट बढ़ रही है, तो इसका मतलब है हम सब उसी वही बनेला हाथी की तरह स्थिति में, हम लोग अपने आप को उस कीचड़ में फंसा रहे हैं। और उस कीचड़ में जब हम फंस जाएंगे ना तो हमारा जो है फिर सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए हमें घर परिवार में उतने ही जगह उतने ही चीजों से आसक्ति रखनी चाहिए जो हमें इसमें से निकलने का अवसर मिले। देखिए ये जो श्रील प्रभुपाद जी यहां पर मैं बताना चाह रहे हैं, ये जो 84 लाख योनियों है ना, 84 लाख योनि में मनुष्य की योनि 4 लाख है, और 4 लाख जो मनुष्य के हैं, कह रहे हैं ये सिर्फ मनुष्य योनि। भगवान की 3 शक्तियां हैं, एक है अंतरंगा शक्ति, मान लीजिए ये स्टेज है ठीक है, और मनुष्य अगर यहां पे है, हम सब मनुष्य हैं, मनुष्य के योनि में है तो हम मनुष्य है इसमें, तो भगवान की एक शक्ति है तटस्था शक्ति, और इसके ऊपर काम कर रही है अंतरंगा शक्ति, और इसके नीचे काम कर रही है बहिरंगा शक्ति। मनुष्य को फ्रीडम मिला हुआ है जो इस तटस्था, यानी कि जैसे 2 खेत के बीच में एक आर होता है ना, तो उस व्यक्ति की स्वतंत्रता है वो इसमें जाए या इसमें जाए, और च्वाइस है हमारे ऊपर व्यक्ति, मनुष्य के ये च्वाइस है। जो व्यक्ति अगर भगवान की अंतरंगा शक्ति राधा रानी के शरण में जाए, भगवान की भक्ति करना चाहेंगे तो भगवान अपने घर में ले लेंगे, लेकिन अगर भगवान के द्वारा ही बहिरंगा शक्ति माया के चंगुल में व्यक्ति फंसना चाहता है, इस देह गे स्त्री में या परिवार में, तो व्यक्ति कहां फंस जाएगा, बहिरंगा शक्ति माया में फंस जाएगा। इसलिए माया में जैसे ही व्यक्ति, और श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं और पुराण बताती है, ये जो मनुष्य की जो योनियां है ना, ये 84 लाख योनियों में सर्वोत्तम योनि है। इसी योनि में केवल और केवल तत्व ज्ञान को प्रकाशित कर सकता है व्यक्ति। मनुष्य योनि इसलिए मिलता है क्योंकि ये भगवान विष्णु गरुड़ के साथ जो कन्वर्सेशन कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, तो उस समय में ये भगवान विष्णु गरुड़ जी को बता रहे हैं। गरुड़ जी भगवान के कौन है, अनन्यतम वैष्णव भक्तों में से एक सेवक हैं, तो कह रहे हैं क्या, देखिए सुनिए, 84 लाख चतुर्शीतो लक्षेषु शरीरेषु शरीरिणाम् न मानुषं विनाड्यन्त्र तत्र ज्ञानं तु लभ्यते। करे 84 लाख योनि में केवल और केवल मनुष्य ही भगवान का भजन कर सकता है, तत्व ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, इसके अलावा कोई और नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए मनुष्य योनि, कह रहे हैं मनुष्य शरीर मिला है तो केवल और केवल भगवान का भजन करने के लिए। मनुष्य जन्म पैया राधा कृष्ण नहीं भजिया, जानिया सुनिया बिसखैनु हरि हरि विफले जन्म गवैनु। ये मनुष्य जन्म पाकर के व्यक्ति अगर हरि का भजन नहीं करता है, भगवान के नामों के शरण में नहीं जाता, तो वो व्यक्ति जानबूझ करके अपना जो है ना गला काट रहा है, सुसाइड कर रहा है, विष खा रहा है। इसलिए मनुष्य जीवन में आकर के अगर, देखिए श्रील प्रभुपाद क्यों बोलते हैं, मनुष्य अभी मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है, अगला शरीर हमें कुत्ते का मिलेगा, मच्छर का मिलेगा, भालू का मिलेगा, क्या मिलेगा हमें पता नहीं है। इसलिए करें दिस बर्थ इज द फाइनल बर्थ। ये जो बर्थ है ना, ये जो जन्म है ना, ये फाइनल बर्थ है। अगर हमने इसको फाइनल समझ करके हम भगवान की भजन में अपने आप को नहीं लगाए ना, तो अगला शरीर हमारा तैयार हो रहा है, मनुष्य के शरीर में आकर के कुत्ते वाली वृत्ति में हम लगे हुए हैं, तो अगला शरीर हमारा कुत्ता मिलना निश्चित है, कोई नहीं बचा पाएगा। अब कुत्ते में आकर के तो हम भगवान का भजन कर नहीं सकते, तो क्या पड़े, फिर से शुरू करना पड़ेगा। अब 84 लाख योनियों में भटकने के बाद कब ऐसा समय आएगा, कौन से वैष्णव की कृपा होगा या कौन सा ऐसा कृत्य उस व्यक्ति के द्वारा होगा जिसके द्वारा वो व्यक्ति मनुष्य के शरीर को प्राप्त करेगा। दुर्लभम मानुषम जन्म तद अपि और ध्रुवम अर्थदम 7.6.1 प्रहलाद महाराज बताते हैं भागवतम में। ये जो दुर्लभ, पहला लाइन मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे उसकी जरूरत नहीं है, कह रहे दुर्लभम मानुषम जन्म, ये मनुष्य का शरीर बड़ा ही दुर्लभ है। मनुष्य का शरीर जल्दी नहीं मिलता, वो भी खास करके भारतवर्ष में जन्म, भारत भूमि ते हैल मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक कर पर उपकार। जन्म सार्थक अपना कब होगा, जब हम भगवान का भजन करेंगे तब ना। इस बात को हमें समझना है, जो हम मनुष्य शरीर केवल और केवल भगवान को प्राप्त करने के लिए मिला है, मनुष्य का शरीर भोग करने के लिए नहीं है। जो मन में आए वो हम कर लिए, मनुष्य का शरीर वो नहीं है, जो मन में आए खा लिए, जहां घूमना है वहां घूम लिए। आजकल के जिंदगी क्या है, दिन भर एक नौकरी से घर नहीं चलता, दो नौकरी पकड़ता है, दिन रात काम करता है लोग गधे की तरह। और मान लीजिए दिन भर काम किया, रात को 10 बजे थोड़ा बहुत जा करके क्लब पार्टी रेस्टोरेंट अटेंड करके वहां खाता है, और उसके बाद फिर अन्य स्त्रियों, जार स्त्री को क्या बोलते हैं उसको, जो गलत स्त्रियों का संग करता है। वो व्यक्ति अपना लाइफ इतना व्यस्त कर रखा है, भगवान का भजन के लिए वो समय ही नहीं निकाला है। तो ये मनुष्य का जो ये जीवन है, इस जीवन को भोग योनि नहीं है, और इसको भोग में लगा रहे। तो जैसे व्यक्ति भोग करना चाहता है ना, उतना वो दलदल में फंसता जाता है। इसलिए मनुष्य का शरीर एक विशेष लिमिट के में बनाया गया है, और मनुष्य के शरीर को मेंटेन करने के लिए ना ज्यादा जरूरत नहीं है, थोड़ा सा खा करके व्यक्ति रह सकता है, थोड़ा सा कुछ खा करके व्यक्ति रह सकता है, और उसको भगवान के भजन। आप बरसाना में जाओ, इस वृंदावन की बात देखो ना, व्यक्ति इस ब्रज रज में एकदम लेटे हुए, ना खाने की चिंता ना पहनने की चिंता, ओ याचक वृत्ति, कुछ मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, भगवान का भजन तो चल रहा है ना। भगवान का भजन चलना चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य शरीर में हैं, तो मनुष्य शरीर में आकर के अगर हम इस जगत के चीजों से अगर हम मिल करेंगे ना, तो हमारा सब कुछ नष्ट नाबूद हो जाएगा। एक भगवान यहाँ पर विष्णु गरुड़ जी को एक बहुत ही सुंदर उपदेश देते हैं, इसको सुनिए। पुनर्ग्राम पुनः क्षेत्रम पुनर्नीतम पुनर्गृहम पुनः शुभाशुभम कर्म न शरीरम पुनः पुनः। कह रहे हैं पुनर्ग्राम, आपको घर मिल सकता है फिर से, गांव आपको फिर से प्राप्त हो सकता है, पुनः क्षेत्र फिर से आपको खेत जमीन सब कुछ प्राप्त हो सकता है, पुनर्नितम अब पुनः फिर से आप जो है ना कोई ग्राम क्षेत्र, अब फिर से आपको वो सब सारा धन प्राप्त हो सकता है, और पुनः शुभा शुभम कर्मम, और कोई भी शुभ कर्म को हम फिर से कर सकते हैं, लेकिन न शरीरम पुनः पुनः, लेकिन मनुष्य का शरीर इतना दुर्लभ है ना, जो पुनः पुनः नहीं मिलता है। ये अवसर एक ऐसा दिया, कह सकते हैं ना, कहते ना जो अपॉर्चुनिटी किसी के दरवाजे को दस्तक एक बार देती है, आपके यहां नॉक करेगी ना, खट खट खट, प्रभु जी आइए, अगर उसमें आपने उठे नहीं, जगे नहीं और दरवाजा नहीं खोले ना, तो वो अपॉर्चुनिटीज कहीं और चली जाएगी। इसलिए मनुष्य शरीर प्राप्त करना ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटीज हमें मिला है, इसको इनकैश करना पड़ेगा। इसको अगर मनुष्य शरीर को लेकर के अगर इसको इनकैश नहीं किए, जीवन की जो मेन चरम लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में इस मनुष्य शरीर को नहीं लगाए, तो फिर ये मनुष्य शरीर तो व्यर्थ हो जाएगा ना। अगर इस शरीर में आकर के फिर भी खूब खा रहे हैं, फिर खूब सो रहे हैं, तो फिर क्या फायदा है ना। तान चदरिया पड़े रहो, क्या कछमछिया कछमछ करे। मनुष्य शरीर में आकर के व्यक्ति ये सोचता है जो भाई क्या जरूरत है, चादर ओढ़ करके एकदम मस्त से सोए रहो। अब ब्रज वृंदावन धाम में तो कहीं ना कहीं भंडारा होता ही रहता है, कमाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। वैसे ब्रज वृंदावन धाम में सोना भी भक्ति है, अगर सोएगा भी तब भी उसका कुछ गड़बड़ नहीं होगा। लेकिन सोना ये तो ब्रज वृंदावन धाम की एक महिमा है ना, जो हमें वो दे रहे हैं। लेकिन मनुष्य शरीर पाकर के ना केवल और केवल भगवान का भजन करना है, उसका और कुछ उद्देश्य नहीं होना चाहिए।
तद गोपितम स्याद धर्मार्थम धर्म ज्ञानार्थ मेव च, ज्ञानम तु ध्यान योगार्थम चिराद ते नमोच्यते।
इतनी सुंदर बात बोल रहे हैं, कह रहे हैं हमें भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं इस धरती पे, उनके अनुगत में रह करके और भगवान का ही जो स्वरूप है शास्त्र, उनके अनुगत उनको पढ़ते हुए उनमें जो विधियां दी है ना उसको ग्रहण करना है। वहां से करें तद गोपितम स्वाद धर्मार्थ, कह रहे हैं ना शरीर की रक्षा का जो उद्देश्य होता है ना, क्या होता है, धर्म का पालन करने के लिए। धर्म का पालन हम क्यों करते हैं, करें धर्म का पालन करते हैं, धर्म का आचरण करते हैं इसलिए क्योंकि उसका लक्ष्य है हमें ज्ञान प्राप्त करना। और ज्ञान प्राप्त का लक्ष्य जो होता है, उद्देश्य होता है भगवान के चरण में फिक्स हो जाना, अपने आप को भगवान की सेवा में नियोजित कर देना। अगर हम ऐसा ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और भगवान के चरण में हमारा प्रीति नहीं उत्पन्न हो रहा है, तो ऐसा ज्ञान तो उस कूड़ा कचरा के बराबर, धान के भूसा के बराबर है जिसका कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा ज्ञान लेकर के हम क्या करेंगे, पीएचडी कर लिए, बहुत सारा पढ़ लिए, ज्ञान का हमें बहुत बड़ा एक सर्टिफिकेट भी मेडल भी मिल गया, और वो ज्ञान अगर भगवान की भक्ति में नहीं लग पाया तो सारे के सारे क्या है, कचरा है ना। तो यहां पे कह रहे हैं भगवान विष्णु जो इस बात का कर रहे हैं, हमें ज्ञान किस लिए प्राप्त करते हैं, केवल और केवल अगर भगवान के चरणारविंद में ऐसा ज्ञान हम अपने आप को फिक्स कर दिए तो समझ लीजिए हमारा ज्ञान परफेक्ट है। कोई व्यक्ति शूद्र कुल में क्यों नहीं जन्मा हुआ है, अगर वो अपना भगवान का भजन कर रहा है, बिना पढ़ा लिखा है भगवान का भजन उसने करना शुरू कर दिया ना, तो उसको पढ़ने की क्या जरूरत है। पढ़ना ठीक है लेकिन उसको अल्टीमेटली भगवान में नियोजित करना। अनासक्तस्य विषयान यथा अहम उपयुंजत निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य मुच्यते। हमारे आचार्य श्रील रूप गोस्वामी पाद बता रहे हैं हमें इस जगत में कैसे जीना चाहिए। अनासक्तस्य विषयान, इस जगत के जितने भी विषय वस्तु हैं, भोग की वस्तुएं हैं, इनसे अपने आप को विषयों से आसक्ति रहित होकर के अपना जीवन जीना है। और भक्ति के अनुकूल, भक्ति के जो अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम, अनुकूल भक्ति के जो अनुकूल है ना उसको हमें ग्रहण करना है। तो भक्ति के जो चीज अनुकूल है उसको यथा उपयोग में, जो हमारे शरीर के लिए कितनी जरूरत है उतनी लेकर के यथा उपयोग में विषय भोग करना चाहिए। ऐसा नहीं है जो एक अनासक्त व्यक्ति विषय भोग नहीं करेगा, कितना करेगा, जितनी उसकी जरूरत है, जितनी शरीर को पालन करने के लिए। अत्याहार प्रयास युक्त आहार विहारस्य, युक्त आहार विहार, ऐसा अपने आप को युक्त करना है जो विहार करने में, आहार में हमें सोचना चाहिए, जो हमें क्या खाना है, क्या खा करके हमारा पेट खराब नहीं हो सकता और क्या खा करके हमारी मानसिक स्थिति गड़बड़ नहीं हो सकती किसी माता को देख करके या किसी पुरुष को देख करके, क्योंकि आहार से ही हमारा चित्त का भ्रम होता है, आहार शुद्धि, चित्त शुद्धि, चित्त शुद्धि मन शुद्धि, और मन शुद्धि होगा तभी जाकर के उसमें भगवान का वास होगा, उसी से हम भगवान का भजन कर सकते हैं। नहीं तो अगर मन ही कॉन्टैमिनेटेड हो जाएगा ना, तो हमारा सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। भगवद गीता के 13वें अध्याय का 10वें नंबर श्लोक में ये बात बता रहे हैं। देखिए, कई लोग इस प्रभुपाद के ही लाइन को पढ़ता हूं, इतना सुंदर बात प्रभुपाद जी लिख रहे हैं।
असक्तिर अन्न भिसंग पुत्र दार गृहादिषु नित्यम च समस्त चित्तत्वम इष्टानिष्टे पत्यसु।
कह रहे वहां पर मैं ना 13वें अध्याय में ज्ञान के लिए ज्ञान का 20 जो है ना अंग बताए हैं। उस 20 अंग में से जो अंग बता रहे हैं, वैराग्य, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति होना चाहिए, और अच्छी तथा बुरी घटनाओं में समभाव अपने आप को रखना चाहिए। कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद, जहां तक संतान, पत्नी तथा घर से विरक्ति की बात है, इसका अर्थ यह नहीं कि इनके लिए कोई भावना ही ना हो। उनके लिए भावना रखना है, उनको मेंटेन करना है, ये सब स्नेह की प्राकृतिक वस्तुएं हैं। लेकिन जब ये आध्यात्मिक उन्नति में अनुकूल न हो तो इनके प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। अगर ये व्यक्ति घर, पत्नी, बच्चे, भक्ति में आपके अनुकूल नहीं है ना, तो उसको छोड़ना भी पड़े तो छोड़ दो। एक बार तुलसीदास जी को पत्र लिखे थे मीराबाई, बहुत सुंदर है वो लाइन, इतना सुंदर देखकर जो भक्ति में करे हमारे घर बार जो है ना अब उपयुक्त नहीं है भक्ति के लिए, तो ये तुलसी क्या बोलते हैं हाँ? तुलसीदास जी बहुत सुंदर मीराबाई को पत्र लिखते हैं, उसमें बोल रहे हैं ऐसे घर को त्याग देना चाहिए जिस घर में आपको राम के भजन करने में आपको दिक्कत दे रहा हो ना। तो ऐसे उदाहरण है, समझ रहे ना, भरत जी ने अपने माता को त्यागा है, बलि को त्यागा है, बलि ने त्यागा है ना अपने गुरु को, है ना, भगवान के भजन करने के लिए हाँ। इधर विभीषण जी ने अपने भाई को त्यागा है, तो ये सब केवल और केवल भगवान का। प्रहलाद महाराज ने अपने बाप को ही साइड कर दिया, समझ रहे हैं। तो ये कह रहे ताबत गारा गृहम गृहम, अपना जो घर है तब गृह बनता है जब घर में का व्यक्ति आपको भजन में नहीं लगा पाता है। व्यक्ति अगर भजन में लगा दिया ना तो वो घर घर है। वो पत्नी बहुत अच्छी मानी जाती है, अनुकूल मानी जाती है, अगर वो पत्नी हमें भक्ति में सहयोग कर रहा है। लेकिन वो अगर अपनी फरमाइश की सारी वस्तुएं मांग रहा है और मुझे लहसुन प्याज खिला रहा है, तो वो पत्नी पत्नी किस काम का फिर। इसलिए कह रहे हैं असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्प्रिय निष्कर्यम सिद्धि परमाम संन्यासेना संन्यासिनादि अधिगच्छति। कह रहे देखिये प्रभुपाद जी कृष्णा कॉन्सियसनेस व्यक्ति का एक परिभाषा क्या बता रहे हैं। जो व्यक्ति कृष्ण भावना मृत में स्थित होकर कर्म करता है और अपने आप को परमेश्वर का अंश समझता है, हमेशा ये समझना चाहिए जो मैं असक्त बुद्धि सर्वत्र होना चाहिए। कह रहे असली कृष्णा कॉन्शियस ये है जब हम ये समझे जो मैं श्री कृष्ण का अंश हूं, मैं श्री कृष्ण का दास हूं, और हमारे द्वारा जो भी कर्म होता है ना, काम जो भी करते हैं, इसका फल भोगने का मुझे अधिकार नहीं है, इसको फल भोगने का अधिकार केवल और केवल, क्योंकि भोग करने का काम किसका है, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, भोग तो केवल और केवल भगवान के लिए है। तो कह रहे इस कर्म का फल जो है ना भगवान के भोग के लिए अधिकार है, तो मनुष्य के लिए क्या है, अधिकार है श्री कृष्ण के ही जो है भगवान की सेवा में अपने आप को नियोजित कर देना, यही जो है एक मनुष्य की वृत्ति है, समझ रहे हैं। मनुष्य की वृत्ति वही उस व्यक्ति को होता है जब तक भगवान का वो भजन नहीं करेगा, अपने आप को इस तरीके से रखेगा नहीं, तब तक भगवान का भगवान की अगर भजन नहीं किया तो जीवन उसका दुभर हो जाएगा। क्योंकि जीवन में हमारे पास गारंटी नहीं है, हमारे पास क्या संबंध है, हमारे पास कितना समय है। इसलिए इस मन को, इस चित्त को केवल और केवल कृष्ण की प्राप्ति, राधा कृष्ण की भजन में लगाना चाहिए। करताल बजाइए प्रभु।
भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे,
भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे,
दुर्लभ मानुष जन्म सत्संगे तरये भव सिंधुरे, तरये भव सिंधुरे, शीत आतप वात वरिषण वरिषण ये दिन यामिनी जागिरे, यामिनी जागिरे, विफल से बुनु कृपन दुर्जन, विफल बिनु कृपन दुर्जन, सफल सुख लब लागिरे, लागिरे, ये धन जौवन पुत्र परिजन, इथे किया छे परतीत रे, कमल दल जल जीवन टल मल, कमल दल जल जीवन टल मल, भजौ हरि पद नीति रे, भजहु हरि पद नीत रे, भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे, श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे,
इस जीवन को इस मन को केवल और केवल भगवान के भजन में लगाना लगाना, ये हमारे आचार्य गोविंद दास जी बोल रहे हैं, जो ये धन जौवन पुत्र परिजन कोई काम का चीज नहीं है, अगर जीवन में भगवान की भजन, क्योंकि ये जीवन को बोल रहे हैं कमल दल जल, कमल का पत्ता देखे है ना, उस पे अगर एक बूंद आपने जल रखा ना तो एक पल भी नहीं टिकता है, तुरंत नीचे गिर जाता है, तो ये जीवन की कोई भरोसा नहीं है, ये कब हमें छोड़ के चला जाएगा ना, हमारा कल्याण नहीं होगा, इसलिए हमें भगवान की भजन में अपने आप को लगा देना चाहिए, भगवान के नामों में लगा देना चाहिए, तो ये श्लोक केवल और केवल हमें भगवान के भजन के लिए अपने आप को आसक्ति रखना है, भगवान में प्रीति किस में करना है, आसक्ति किस में करना है, भगवान में, भगवान के भक्तों में, न कि इस भगवान के द्वारा जो बनाई हुई दुनिया भी प्राकृतिक वस्तु है ना, उसमें आसक्ति किए तो फिर हम फंस गए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुवेभ्यः पतितानां पावने वैष्णवेभ्यो श्रील प्रभुपाद।